नमस्कार भारत, तारीख 16 दिसंबर दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। राहुल गांधी आज संभालेंगे कांग्रेस की कमान, क्या होंगी नए अध्यक्ष की चुनौतियां?
राहुल गांधी वेयरिंग अ क्राउन ऑफ थॉर्न, चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को खड़ा करना, दूसरा है कि सिर्फ मोदी जी को बैशिंग करने से इनका काम नहीं बनेगा।
संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में ट्रंप सरकार की नीतियों को लेकर किया आगाह, अमेरिका में गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ सकती है खाई।
A narrative that on the one hand the rich are virtuous and
और विवेचना में रेहान फसल याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को।
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका में अमीरों और गरीबों के बीच असमानता का मूल्यांकन पेश किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार की नीतियां स्थिति को और भी बदतर बना सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फिलिप ऑल्सन ने अमरीका का 2 सप्ताह का दौरा समाप्त करने के बाद कहा है कि सरकार का कर सुधार बिल असमानता में नाटकीय रूप से वृद्धि कर सकता है। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मनांगागवा को सत्तारूढ़ पार्टी जानू पीएफ का प्रमुख नेता चुन लिया गया है और उन्हें अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए पार्टी का उम्मीदवार भी तय किया गया है। पार्टी की सालाना बैठक में यह फैसला लिया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मनांगागवा ने कहा कि उनके नेतृत्व में जानू पीएफ पार्टी जिम्बाब्वे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करेगी। ऑस्ट्रिया में सेबास्टियन पुट्स के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी ऑस्ट्रियाई पीपल्स पार्टी आप्रवासी विरोधी फ्रीडम पार्टी के साथ गठबंधन के समझौते पर राजी हो गई है। 2 महीने पहले हुए संसदीय चुनावों में पुट्स की पार्टी पहले स्थान पर रही थी। शनिवार को ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति ने पुट्स और फ्रीडम पार्टी के नेता हाइंस क्रिस्टियन यहा को नई सरकार की गठन की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। ऑस्ट्रिया पश्चिमी यूरोपीय देशों में ऐसा पहला देश होगा जहां धुर दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार होगी।
Es war uns wichtig auch einen neuen politischen Stil im Umgang miteinander in Österreich.
हमारे लिए आवश्यक है कि ऑस्ट्रिया में हम नई राजनीतिक शैली स्थापित करें और मुझे विश्वास है कि वार्ता के दौरान हम इसमें सफल होंगे। सरकारी कार्यक्रम के लिए अगले 5 सालों के लिए सहयोग के जिस आधार पर हम पहुंचे हैं वो परिवर्तन है। ये थे सेबास्टियन पुट्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील की कंस्ट्रक्शन कंपनी से अवैध तरीके से पैसे लेने के आरोप के बाद पेरू की विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति पेड्रो पब्लो कुचिंस्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव पर अधिकतर पार्टियों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं और कहा है कि पेरू का नेतृत्व करने के लिए कुचिंस्की में नैतिक क्षमता का अभाव है। हालांकि कुचिंस्की ने इन आरोपों का खंडन किया है और इस्तीफे की मांगों को अस्वीकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि गलतफहमी के कारण होने वाले युद्ध के खतरे को कम किया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि कूटनीति कोई हल देगी, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले उत्तर कोरिया को अपना धमकी भरा व्यवहार बंद करना होगा।
North Korea claims to undertake its nuclear weapons program as an essential step for the survival of its regime.
हम इस बात को लेकर साफ हैं कि हमारे देश की रक्षा के लिए मेज पर बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ना ही हम उत्तर कोरिया से युद्ध मांग रहे हैं और ना ही चाहते हैं। अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ रक्षा के सभी आवश्यक उपाय अपनाएगा, लेकिन हमें आशा है कि कूटनीति एक समाधान पेश करेगी। ये थे अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के शब्द। मैक्सिको की संसद ने एक विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी है जिसके तहत देश में ड्रग्स के खिलाफ जंग में सेना को अधिक शक्ति मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने मैक्सिको सरकार से इस कानून को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि इसके जरिए सुरक्षा बलों को अपनी ताकत का दुरुपयोग करने का मौका मिल सकता है। पिछले महीने होंडुरस में हुए राष्ट्रपति चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ विपक्षी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन अगले दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस पर पत्थर फेंके। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। तारीखों की अपनी अहमियत होती है। 16 दिसंबर यानी आज की तारीख, साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के लिए विजय दिवस की तरह याद की जाती है। और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज एक ऐसे मुकाबले में राहुल गांधी की जीत के बाद उनकी ताजपोशी करने जा रही है जिसमें उनके सामने कोई था ही नहीं। चुनाव था कांग्रेस अध्यक्ष पद का और राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे नेता ने नामांकन ही नहीं किया था। 11 दिसंबर को राहुल के निर्वाचित होने का ऐलान किया गया और आज से कांग्रेस में शुरू हो रहा है राहुल युग।
आई hereby declare see राहुल गांधी elected as the president of the Indian National Congress।
मैं इंदिरा गांधी का पोता हूं, ये बात मत भूलिए।
My father राजीव गांधी जी।
राहुल थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है।
राजीव जी ने 21वीं सदी की बात की थी।
My mother came to my room and she cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison।
पहले फोटो हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, 40 फोटो होती थी, नेहरू जी, पटेल, आजाद, जायंट्स हुआ करते थे, उनमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। ये बात हमने करनी, हमें 40-50 नेता तैयार करने हैं।
The handing over of certificate of election as Congress president is scheduled to be held on 16th December
2017। 11 बजे का वक्त मुकर्रर है। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें, राहुल गांधी की कुछ आवाजें हमने आपको सुनाई। राहुल गांधी ने साल 2004 के आम चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट जीतकर संसद में प्रवेश किया था। साल 2013 में वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। राजनीति के जानकार तभी से तय मान रहे थे कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी के पहले नेहरू गांधी परिवार के 5 सदस्य कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा और राजीव प्रधानमंत्री भी रहे और सोनिया गांधी सबसे लंबे वक्त तक यानी करीब 19 बरस तक पार्टी की अध्यक्ष रहीं। सोनिया गांधी ने कल पत्रकारों से कहा कि अब उनकी भूमिका रिटायर होने की है और आज सुबह 11 बजे पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथों में होगी। पार्टी ने जश्न मनाने की तैयारी की हुई है, लेकिन राहुल गांधी के लिए आगे की राह कितनी आसान होगी, हमारे साथी अभिजीत श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर से यही सवाल किया।
देखिए, राहुल गांधी को अभी तो ये जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ही इज वेयरिंग अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स, इतना आसान तो नहीं है। चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है। पार्टी अभी पावर में नहीं है और 44 सीट्स ही मिला उनको लोकसभा पोल में। पार्टी का मोरालिटी थोड़ा बूस्ट करने के लिए अभी गुजरात इलेक्शन में इनका जो अवतार है वो थोड़ा चेंज हुआ, इमेज थोड़ा बेटर हुआ, इसलिए लोग बहुत उत्साहित थे। तो इसके आगे अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें से एक है यंग पीपल क्या चाहते हैं, जॉब चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन इनकी क्या है, व्हाट इज हिज प्रोग्राम, जो यूथ है उनको कैसे दिलाएंगे जो जॉब्स वगैरह और उनको जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो कैसे दिलाएंगे, वो कोई प्लान अभी तक नजर नहीं आ रहा है। दूसरा है कि सिर्फ मोदी जी को बैशिंग करने से इनका काम नहीं बनेगा, इनका एक नया नरेटिव चाहिए। इनका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इनका फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये क्या करना चाहते हैं देश को। तो इनका पिताजी कम से कम उस समय बोलते थे कि मैं 21st सेंचुरी के बाद, लोग तो उसके ऊपर हंसते थे, फिर भी वो 21st सेंचुरी के बारे में उसका कोई विजन तो था। तो इनका क्या विजन है वो अभी स्पेल आउट नहीं किया। वो किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, वो आगे देखना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सचिन पायलट हैं और दीपेन हुडा हैं, तो ऐसे वो डायनास्टी का लोग ही इनके साथ अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ये क्या मैसेज बाकी कांग्रेस वर्कर को जाएगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हमारा चांस कब आएगा। हम तो पार्टी में ये सुन रहे हैं कि 65-70 उसके ऊपर जितना भी लोग हैं उनको तो हटा देंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, ये कैसे करेंगे वो आगे देखना चाहिए।
गुजरात और हिमाचल में राहुल यदि हार जाते हैं तो एक बार फिर उन पर ही सवाल उठेंगे और अध्यक्ष बनने के बाद अगले साल कर्नाटक में राहुल की पहली परीक्षा भी होनी है। इसी बीच पार्टी में राहुल गांधी को सब कुछ नए सिरे से बनाना भी है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस का पुनर्गठन करने में कामयाब होंगे?
देखिए, इनका सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को खड़ा करना। तो वो अभी पार्टी में कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो है ही नहीं है। 2019 लोकसभा इलेक्शन तक काम तो बहुत बहुत मुश्किल है मेरा हिसाब से। इनका अभी तक प्लान खुलासा नहीं किया, कब करेगा वो भी नहीं मालूम। और इनका यूपीए का अलावा अभी जो है वो श्रिंक हो गया, उसको और पार्टनर्स का भी जरूरत है। कहाँ कहाँ कोएलिशन बना सकते हैं वो सब देखना पड़ेगा। तो कोएलिशन के बिना 2019 का कांग्रेस पावर में आने का चांस ही नहीं है। तो एक्चुअली आप देखें तो मोदी जी का बीजेपी का वोट तो 30% ही है, बाकी सब लोग तो बाहरी हैं। वो सब एकजुट करके थोड़ा अपोजिशन वोट को डिवाइड नहीं किया तो 2019 में कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट आ सकता है।
ये थी कल्याणी शंकर। दो दिन बाद यानी 18 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और गुजरात में पार्टी दो दशक के बाद सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत के अनुमान जाहिर कर रहे हैं। नतीजे ऐसे ही आए तो ये राहुल गांधी के लिए झटका हो सकता है। हालांकि चुनाव के कुछ वक्त पहले गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी, फिर एग्जिट पोल में बदली हुई तस्वीर कैसे सामने आई, हमारी सहयोगी गुरप्रीत कौर ने एग्जिट पोल कराने वाली एक संस्था CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार से यही सवाल किया।
30 नवंबर का जो पोल था वो 30 नवंबर के आसपास, उससे एक सप्ताह पहले से ही लोगों से ये पूछा गया था कि वो किसको वोट देंगे जब जिस दिन चुनाव होगा। तो उसके बाद एग्जिट पोल जो है वो 14 दिसंबर को जब लोगों ने वोट दिया तब उसके बाद पूछा गया कि आपने वोट किसको दिया। 30 नवंबर और 14 दिसंबर के बीच में दो सप्ताह का वक्त था, इस बीच में कई चीजें हुई, कैंपेन हुआ, बहुत एग्रेसिव कैंपेन हुआ बीजेपी के द्वारा, खासकर प्रधानमंत्री की कई रैलियां हुई, और मुझे लगता है इन सब चीजों का प्रभाव दिखाई पड़ता है कि वोटरों ने अपना मन पिछले दो सप्ताह के बीच में कुछ बदला है।
किसी भी एग्जिट पोल को कितना भरोसेमंद माना जाए, क्योंकि बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी जो एग्जिट पोल हुए थे असल नतीजे थे वो इससे उलट थे।
बिहार में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल उलट थे, आधे आधे, जैसे एकाध एग्जिट पोल ने बीजेपी को जीत दिखाई थी, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल ये भी बता रहे थे कि महागठबंधन जीतेगा। अब जीत हार का अंतर कितना होगा इस पे चर्चा हो सकती है। दिल्ली के सारे एग्जिट पोल सही थे, ट्रेंड बता रहे थे सही, ये जरूर है कि कोई ये नहीं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत होगी, ज्यादा से ज्यादा कोई 50-52 सीट तक कह रहे थे, कुछ ये भी कह रहे थे कि शायद 38-40 सीट ही आम आदमी पार्टी ले पाएगी।
तो आपका कहना है कि इस बार बीजेपी दिख रही है बढ़त बनाते हुए?
बिल्कुल, मुझे लगता है सिर्फ हमारा एग्जिट पोल नहीं, सारे एग्जिट पोल एक बात का संकेत देते हैं कि बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर बढ़त है। अब ये बढ़त कितनी बड़ी है, क्या बीजेपी 100 सीटें लाएगी या बीजेपी 115 सीटें लाएगी या 130 या 140, फर्क सिर्फ इस मात्र का है कि सीटें कितनी हो सकती है, अंतर जीत हार का कितना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है सारे के सारे पोल एक ही बात का संकेत कर रही है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है और कांग्रेस इस बार भी 22 साल के बाद भी चुनाव जीतने में सफल नहीं है,
ये एक अनुमान है। हालांकि सही नतीजे 18 दिसंबर को सामने आएंगे। ये थे CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
जरा अपने घरे मान में देखो क्या हाल हो गया है आपका, और आप भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चुनौती को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। मैं आज फिर चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती, आओ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो।
मोदी जी, ये हमारी पार्टी का, गांधी जी का इतिहास है, उन्होंने हमें समझाया सिखाया प्यार से दुश्मन को हराओ। और मोदी जी, गुजरात में बिना गुस्से प्यार से हम आपको हराने जा रहे हैं।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, किसका दावा सही निकला, कौन गलत साबित हुआ, जानने के लिए सोमवार 18 दिसंबर को सुनिए BBC हिंदी का विशेष प्रसारण सीधे गुजरात से, रेडियो, ऑनलाइन और फेसबुक पर पूरे एक घंटे, शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शाम 8 से 8:30 बजे तक ये अतिरिक्त कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शॉर्ट वेव 9540 किलोहर्ट्ज़, 5875 किलोहर्ट्ज़, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के दौरे से लौटे संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिनिधि के मुताबिक वहां गरीबों और अमीरों के बीच बड़ी खाई है। उन्होंने आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा सरकार की नीतियां गरीबों और अमीरों के बीच इस अंतर को और बढ़ा सकती हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद शाहिद।
अमीरी और गरीबी की खाई अमेरिका जैसे विकसित देश में भी हो सकती है। अत्यंत गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फिलिप ऑल्सन ने अमेरिका में अमीरों और गरीबों के बीच असमानता का मूल्यांकन पेश किया है। दो हफ्ते के अमेरिकी दौरे से लौटे ऑल्सन ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित कर सुधार बिल के कारण असमानता में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। अमरीकी कांग्रेस जल्द से जल्द टैक्स बिल पास करवाने की कोशिश कर रही है। इससे असमानता में ऐसी जबरदस्त वृद्धि होगी जिसकी कल्पना ही की जा सकती है। इसी समय ही प्रशासन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो कल्याणकारी और स्वास्थ्य योजनाओं में बदलाव की योजना बना रहा है। इसका मतलब है कि कई कार्यक्रम बंद कर प्रशासन पैसा बचाना चाहता है। ये थे फिलिप ऑल्सन के शब्द। फिलिप कहते हैं कि अमेरिका में कई स्थानीय प्रशासन ऐसी नीतियों को लागू कर सकते हैं जिससे बेघर लोग अपराधी बन जाएंगे।
You've got this practice of municipalities increasingly...
नगर पालिकाओं द्वारा तेजी से ऐसे कानूनों को अपनाने का मामला देखा गया है जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर सोना, फुटपाथ पर बैठना और खुले में पेशाब करना एक अपराध है। खुले में पेशाब करना ठीक नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसी नगर पालिका में हैं जहां सार्वजनिक शौचालय नहीं मुहैया कराए गए हैं तो फिर क्या किया जाए। ये थे फिलिप ऑल्सन के शब्द। ऑल्सन की रिपोर्ट में मुख्य तौर से नीतियों में बदलावों का जिक्र किया गया है जो अमेरिका में मूल रूप से स्थिति को बदल देगा। उनका कहना है कि सामाजिक कल्याण प्रणाली में बहुत सी खामियां हैं जिनमें पैसों की दिक्कत और सामाजिक सुरक्षा की कमी है, लेकिन अगर इसमें भी बदलाव होता है तो ये प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद।
बीबीसी इंडिया बोल।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता शक के घेरे में क्यों? गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल खड़े किए गए। हिमाचल और गुजरात के चुनाव साथ न करवाना, राहुल गांधी के इंटरव्यू पर रोक लगाना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को नजरअंदाज करना। अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए क्या करे चुनाव आयोग? इस बार इंडिया बोल में इसी मुद्दे पर रखी अपनी राय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 16 दिसंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब विवेचना। राज कपूर की गिनती उन फिल्मकारों में होती है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। वो शायद भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत थे। रूस, चीन, ईरान, तुर्की जैसे न जाने कितने देश हैं जहां राज कपूर आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। राज कपूर की 93वीं जयंती पर उनके जीवन के दिलचस्प पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
अपने पे हंसकर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, हिंदू न मुस्लिम, पूरब न पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। मैं यही चाहता हूँ, किसी को अगर थोड़ी सी खुशी बांट पाऊँ तो मैं समझता हूँ एक कलाकार के नाते मैंने अपना ऋण चुका दिया।
ये आवाज है उस शख्स की जिसे भारतीय फिल्म इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है। राज कपूर बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज थे। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संपादक, संगीतकार, कहानीकार, भारतीय फिल्म उद्योग की फर्स्ट फैमिली के कर्ता, प्रेमी, समाजवादी, आइडियलिस्ट और न जाने क्या क्या। राज कपूर के बारे में एक कहानी कई बार सुनाई जाती है कि जब नेहरू रूस गए तो सरकारी भोज के दौरान नेहरू के बाद वहां के प्रधानमंत्री निकोलाई बोल्गनिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ आवारा हूं गाकर उन्हें चकित कर दिया। 1996 में जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और बेटी ऋतु नंदा चीन गए तो उन्हें देखते ही चीनी आवारा हूं गुनगुनाने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कौन थे, लेकिन वो ये गीत गाकर राज कपूर और भारत का सम्मान कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि आवारा माओ से तुंग की पसंदीदा फिल्म थी। आखिर क्या वजह थी राज कपूर के रूस, चीन, तुर्की और अफ्रीका में इतने लोकप्रिय होने की? राज कपूर ने खुद एक बार बीबीसी को बताया था।
ये सन 54 का किस्सा है जबकि पहली मर्तबा हम ایک ڈیلیگیشن میں روس گئے تھے اپنی تصویریں لے کے. میں نے حال ہی میں ایک تصویر بنائی تھی, آوارہ جس کا نام تھا. اس تصویر سے وہاں ہمارا لوگوں سے پریچے ہوا. وہ تھوڑا بہت ہندوستان کو جانتے تھے, ہندوستان کے لوگوں کو جانتے تھے, لیکن ہندوستانی تصویروں کے ذریعے وہ کچھ اور قریب ہندوستان کے آئے. تو تب وہاں انہوں نے ایک آوارہ دیکھا. شکل صورت اس کی کچھ راج کپور جیسی تھی, لیکن دل اس کا عوام کا تھا, اس ہندوستان کے نوجوان کا تھا جو آج تک اسی پیار سے دھڑکتا ہے. دراصل انہوں نے راج کپور کو نہیں اپنایا, اس ہندوستان کے نوجوان کو اپنایا تھا جس کا دل بار بار یہی کہتا تھا, آباد نہیں برباد سہی, گاتا ہوں خوشی کے گیت مگر انجان نگر سنسان ڈگر کا پیارا ہوں.
آوارہ ہوں آوارہ ہوں یا گردش میں ہوں آسمان کا تارا ہوں آوارہ ہوں.
راج کپور کی پرورش اور انہیں راج کپور بنانے میں ان کے پتا پرتھوی راج کپور کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے راج کپور کے کہنے پر کہ انہیں فلموں میں کام کرنا ہے, انہیں ایک روپے مہینے کی نوکری دی تھی اور ان کا کام تھا اسٹوڈیو میں جھاڑو لگانا. راج کپور کی بیٹی ریتو نندا بتاتی ہے.
میں سمجھتی ہوں کہ میرے دادا کا پاپا کے نیچر پہ اور اپ برنگنگ میں ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا. ایک بار جب پاپا تھوڑے بڑے تھے, اسکول میں جاتے تھے, بمبئی میں بہت زبردست بارش ہو رہی تھی, پاپا پر ٹرام سے جاتے تھے اسکول, پر جب اتنی بارش ہو رہی تھی تو ان نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں آج مجھے گاڑی چھوڑ دے. تو ماں نے کہا ہاں ہاں پر ٹھہرو میں اپنے آپ کے پتا جی سے پوچھتی ہوں. اور جب وہ دادا جی کے پاس گئی تو دادا جی نے کہا نہیں. پاپا سب دروازے کے پیچھے سے سن رہے تھے. اب دادا جی نے کہا کہ زندگی اسی ایکسپیرئنس کی بنی ہوتی ہے, وہ جائے گا بھیگے گا, پانی میں پڈلز ہوئیں گے, اس کو ہاتھ پاؤں مارے گا اور ٹرام میں جائے گا لوگ ایسے, تو یہ جو ایکسپیرئنس اسے ملے گا وہ زندگی بھر اسے یاد رہے گی اور کہیں نہ کہیں یہ ایکسپیرئنس وہ استعمال کرے گا. تو رہنے دو جانے دو. پاپا یہ سن رہے تھے تو وہ آئے سامنے اور بولا ہاں ماں پاپا ٹھیک کرتے ہیں, میں ٹرام سے ہی جاؤں.
میرا جوتا ہے جاپانی, یہ پتلون انگلستانی, سر پہ لال ٹوپی روسی, پھر بھی دل ہے ہندوستانی, میرا جوتا ہے جاپانی.
راج کپور کبھی بستر پر نہیں سوتے تھے, ہمیشہ زمین پر سویا کرتے تھے. کپور خاندان پر بہو چرچت کتاب دا کپورز دا فرسٹ فیملی آف انڈین سینما لکھنے والی مدھو جین لکھتی ہیں.
راج کپور جہاں بھی جاتے تھے وہ ہوٹل کی پلنگ کا گدا کھینچ کر زمین پر بچھا لیتے تھے. اس کی وجہ سے وہ کئی بار مصیبتوں میں پھنسے. لندن کے مشہور ہلٹن ہوٹل میں جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ہوٹل کے پربندکوں نے انہیں چتایا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جب انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا تو انہوں نے ان پر جرمانہ لگا دیا. وہ 5 دن اس ہوٹل میں رہے اور انہوں نے خوشی خوشی روز پلنگ کا گدا زمین پر کھینچنے کے لیے جرمانہ دیا.
راج کپور اپنی فلموں میں اکثر وہ سب کچھ دکھاتے تھے جس سے وہ خود گزر چکے ہوتے تھے. راج کپور اپنے بارے میں خود کہا کرتے تھے کہ وہ نگنتا کے اپاسک ہیں. اس کے لیے وہ اکثر اردو کا ایک شبد استعمال کرتے تھے, مقدس اوریا یعنی پوتر نگنتا. اور اس کا کارن وہ بتاتے تھے کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ نہایا کرتے تھے. ان کی بیٹی ریتو نندا ان کے بچپن کا ایک اور قصہ سناتی ہے.
پاپا جب آئی تھنک 1.5-2 سال کے ہوں گے تو ایک جگہ تھی جہاں پہ رات کو بیٹھ کر لوگ چنے بیچتے تھے. تو ایک دن وہ نیچے اتر کے چنا لینے کچھ گئے, وہ پیسے ویسے تو تھے نہیں تو چنے والے کو دیکھتے رہے نا. تو انہوں نے ایک شرٹ پہنی تھی اور نیچے کچھ نہیں پہنا تھا. تو وہ چنے والی نے ان سے مستی کی اور بولا اچھا تم اپنی شرٹ اٹھاؤ اور ایک بول بنا, میں تمہیں چنا دیتی ہوں. تو انہوں نے اسے چنا دے دیا. اور پھر بہت سال بعد जब उन्हें समझ आई कि क्या हुआ तो ये उनका तजुर्बा बन गया और उन्होंने इसको भी बॉबी में इस्तेमाल किया। बॉबी में एक सीन है कि लाइब्रेरी में डिम्पल बैठी है, पढ़ रही है और ऋषि जी उन्हें शीशा से डिस्टर्ब करते हैं और इवेंचुअली वो गुस्से होकर बाहर आ जाती है और जब बाहर आते हैं वो चलने लगते हैं। ऋषि कहता है कि चलो हम कॉफ़ी पीने जाती है, शीशे नहीं हम चन्ना खाने जाएंगे। तो चन्ना बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ सेक्स सिंबल फॉर हिम।
कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए
तेरे नैनों की भूल भुलैया।
उनकी फिल्म बॉबी में एक सीन है जब ऋषि कपूर पहली बार डिंपल कपाड़िया से मिलने उनके घर जाते हैं। राज कपूर ने नरगिस के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात को हूबहू सिनेमा के पर्दे पर उतार दिया था। मधु जैन लिखती है,
उन दिनों नरगिस बड़ी स्टार बन चुकी थी जबकि राज कपूर केदार शर्मा के असिस्टेंट मात्र थे। वो किसी काम से नरगिस की माँ जद्दन बाई से मिलने उनके मरीन ड्राइव वाले घर पर गए। जब राज कपूर ने घंटी बजाई तो नरगिस पकौड़े तल रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अनजाने में उनका बेसन से सना हाथ उनके बालों से छू गया। राज कपूर ने नरगिस की उस छवि को पूरी उम्र याद रखा और जब उन्होंने बॉबी बनाई तो उन्होंने ऋषि और डिंपल पर हूबहू वही सीन फिल्माया।
अक्सर कोई लड़की सुहाल में किसी लड़के से सोल में साल में जो कहती है वो मुझे कहना है।
जब राज कपूर और नरगिस का ब्रेकअप हुआ तो राज ने उसे बहुत बुरी तरह से लिया। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ने बनी रेवन को बताया था कि कई रातों तक राज कपूर बहुत देर से घर लौटते थे। उन्होंने शराब पी रखी होती थी, वो अपने टब में लेटकर बुरी तरह से रोया करते थे। मुझे पता था कि वो नरगिस के लिए रो रहे हैं।
हमने तुझको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना।
1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में पुरस्कार लेने पहुंचे तो अचानक उन्हें दमे का दौरा पड़ा। उस समय पत्रकार प्रदीप सरदाना वहां मौजूद थे।
मुझे याद है 2 मई 1988 की बात है, तो मैंने देखा कि राज कपूर जी ने किसी आदमी को बुलाया जो वहाँ के ड्यूटी पे थे, उनको कहा कि जरा एक मिनट आइए और फिर वो उनको बाहर लेकर चले गए। करीब 8-10 मिनट बाद वो वापिस आए तो बड़े कुछ हाँफते हुए आए। तभी मैंने देखा कृष्णा जी जो साथ में बैठी थी उनके साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था, वो उन्होंने खोला और मास्क उनके मुंह पर लगाया, उनको ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। तभी देखा थोड़ी देर में मंच से उनका नाम अनाउंस हो गया, घोषणा हुई उनके नाम की कि आए राज कपूर साहब और पुरस्कार लें अपना। तो राष्ट्रपति जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद वो नीचे आए स्टेज से और उन्होंने वहीं उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। खैर उनको फिर कुछ लोग बाहर ले गए, मैं भी तुरंत वहाँ पहुँच गया, उनको पसीने आ रहे थे काफ़ी, मास्क इनको लगाया हुआ था वो। तो तभी जो राष्ट्रपति की जो डॉक्टर थी वो बाहर आ गई तो उन्होंने उनको देखा तो वो उनको इंजेक्शन देने लगी। तो राज कपूर देखिए आप उस हालत में भी बड़े चेतन अवस्था में थे कि उन्होंने उनको कहा कि रुक ये आप क्या दे रही हैं मुझे। उनका ये सर डेरी फैलिन का इंजेक्शन दे रही हूँ। कहते वो तो मैं भी 2 घंटे पहले होटल से लेकर चला हूँ, फिर ले सकते हैं? उन्होंने कहा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्ट्रेचर लेकर फिर अंदर आए तो राज कपूर बोले नहीं 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 मैं स्ट्रेचर पर लेट कर नहीं जा सकता। मैं कहा कोई बात नहीं आप उसमें बैठ जाइए हम आपको ऐसे ले सकते हैं। फिर उस पर बैठ गए, फिर हम उनको लेकर एम्बुलेंस तक गए और उसके बाद जाकर हम एम्स हॉस्पिटल पहुंचे।
एम्स में थोड़ी देर के लिए उनकी तबीयत सुधरी लेकिन फिर वो कोमा में चले गए और 1 महीने बाद 2 जून 1988 को राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो।
रिहान फतेल, बीबीसी दिल्ली।
विदा लेने के पहले मुख्य समाचार एक बार फिर मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार। राहुल गांधी आज कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे।
संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमरीका में अमीरों और गरीबों के बीच असमानता का मूल्यांकन पेश किया है। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मनांगागवा को सत्तारूढ़ पार्टी जानू पीएफ का प्रमुख नेता चुन लिया गया है। ऑस्ट्रिया में सेबास्टियन पुट्स के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी ऑस्ट्रियाई पीपल्स पार्टी आप्रवासी विरोधी फ्रीडम पार्टी के साथ गठबंधन के समझौते पर राजी हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया दीपक जसरोटिया ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।